आप अपने कर्म में, अपने व्यवहार में प्रेम मिला दीजिए, स्नेह मिला दीजिए, बंदगी बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। उल्टे ज्ञान को हटाने के लिए भगवान में प्रीति करिए और भगवान के नाते लोगों से व्यवहार करिए। हार्ट फेल होना इतना खतरा नहीं जितना श्रद्धा फेल होना खतरा है। श्रद्धा टूटना बहुत दुखदायी बात है। मैंने सुनी है पौराणिक कथा कि किसी साधक ने गुरु से गुरु दीक्षा ली। छुट्टियों के दिन में वो विद्यार्थी नर्मदा किनारे छोटी मोटी कुटीर बनाकर अनुष्ठान करने को गया। उस विद्यार्थी ने कुटीर बांधकर अनुष्ठान चालू किया। नर्मदा किनारे की जो घटना बता रहा हूं, देवऋषि नारद पसार हो रहे हैं, अमरकंटक आदि इलाका होगा जो भी, वहां एक तपस्वी तप कर रहे थे। बड़ी बड़ी जटाएं थी। तपस्वी से पूछा, कहो तपस्वी क्या चाहते हो? मैं भगवान नारायण के पास जा रहा हूं। तपस्वी ने कहा, मेरी बात अगर आप पूछ सकें तो पूछना कि 40 साल हो गए जटाएं धरती को छू रही है, दाढ़ी भी देखो नाभि तक पहुंच गई, अब शरीर का कोई भरोसा नहीं, भगवान से पूछिए मिलोगे कि नहीं मिलोगे, और मिलोगे तो कब मिलोगे? इतने इतने जप किए, इतने इतने अनुष्ठान किए, इतने इतने व्रत किए, इतने इतने उपवास किए, कब मिलोगे? कितने जन्मों में मिलोगे? जरा पूछ लइयो। नारद जी ने उस तपस्वी की बात सुनी। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं पूछूंगा। चलते चलते नारद जी वहीं से गुजरे जहां वो लड़का अनुष्ठान के लिए कुछ ही दिनों से आया था। उसने देखा, संत को प्रणाम किया, महाराज पधारिए, आदर सत्कार। नारद जी को प्रसन्न किया। नारद जी ने कहा, तुझे कुछ पूछना है तो बोल, मैं भगवान नारायण के पास जा रहा हूं, वैकुंठ जा रहा हूं। वैकुंठ और भगवान के पास मेरी बात पहुंच सकती है? बोले, क्यों नहीं, भगवान तो प्राणी मात्र के सुहृद है। तो क्या पूछूं महाराज, मुझे पता नहीं। बोले, तपस्वी ने पूछवाया कि कब मिलोगे, कितने जन्मों में मिलोगे? तो महाराज मेरी भी यही बात पूछ लीजिए। नारद जी विदा हुए। नारायण नारायण करते नारद जी तो अपनी योग धारणा से वैकुंठ गए। 4-6 महीने के बाद फिर नारद जी उसी रूट से, उसी रास्ते से गुजरे, तपस्वी को मिले। तपस्वी को कहा कि भगवान ने कहा है कि जितना तुम तप व्रत उपवास कर रहे हो उसके हिसाब से तुम्हारी वासना क्षय, मनोनाश और बोध, ये तीनों बातें पूर्ण होने में 3 जन्म लगेंगे, 1 जन्म ये, 2 जन्म और बाकी। तपस्वी के हाथ से माला छूट गई। हार्ट फेल होना इतना खतरा नहीं जितना श्रद्धा फेल होना खतरा है। श्रद्धा टूटना बहुत दुखदायी बात है, लेकिन श्रद्धा हर जगह नहीं की जाती है। कलयुग के जमाने में श्रद्धा करने में भी थोड़ा विवेक, वैराग्य आदि चाहिए। तपस्वी की श्रद्धा टूट गई। नारद ने कहा था, तेरी किसी की श्रद्धा बढ़ाना भगवान के लिए तो ठीक है, साधन भजन के लिए, उसकी मैंने श्रद्धा तोड़ने का निमित्त बना। अगर मैं उस विद्यार्थी जहां अनुष्ठान करता था वहां से गुजरा और उसकी भी ऐसी श्रद्धा टूटे तो अच्छा नहीं। नारद जी जाते जाते पगडंडी बदल रहे हैं, लड़के ने दिवाली की छुट्टियों में फिर अनुष्ठान करने के लिए वहीं कुटिया बनाई थी झोंपड़ी, घास फूस देख लिया, लड़के ने आदर से बुलाया, महाराज जी आप आज से 4 महीने पहले पसार हुए थे, भगवान से पूछने के लिए कुछ मेरे को कहा था? बोले, हाँ भगवान से पूछा तो है लेकिन तेरे को मैं जवाब नहीं दूंगा। क्यों? कि नहीं, तपस्वी को जवाब दिया तो उसकी श्रद्धा टूट गई, तेरे को जवाब दूं? महाराज मेरे विषय में भगवान से बात हुई। बोले, हुई तो भगवान से मेरी बात भगवान तक पहुंची? बोले, हाँ बेटा, हर प्राणी की भगवान तक हर रोज बात पहुंचती है, अंतर्यामी तक, लेकिन उस साकार ब्रह्म तक भी पहुंचती है संतों के थ्रू। मैंने पहुंचाई तेरी बात, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने जो कहा मैं नहीं कहूंगा, इनकार भी आमंत्रण देता है। एक बार में लिखवा दो कि ये मत पढ़िए, वो आदमी पहले पढ़ेगा, इधर मत देखना तो आपको देखने की जिज्ञासा और बढ़ेगी। नारद जी कहते वो बात मैं नहीं बताऊंगा महाराज, क्यों कृपा कीजिए। बोले नहीं बताऊंगा। नहीं महाराज दया कीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है कहूंगा, लेकिन एक शर्त है, तो अपनी कुटिया में चौका कर ले, गाय का लेपन विपन करके सो जा, मुंह में तुलसी के पत्ते रख दे, मैं कहूं फिर तेरी श्रद्धा फैल हो या हार्ट फैल हो उसका पाप मेरे सिर पर न लगे, ये पहली बात। बात ऐसी है कि तू सुन नहीं सकेगा। बोले भगवान के साथ मेरे लिए बात हुई है महाराज, जो भी हो मैं सुनूंगा और आपकी जो शर्त है मुझे कबूल है। उस लड़के विद्यार्थी ने चौका वोका कर दिया अपना, लेट गया, मुंह में तुलसी के पत्ते रखे। नारद जी का एक पैर तो कुटिया के चौकट में और एक पैर बाहर। नारद जी कहते हैं अब तेरा कर्म धर्म तेरा श्रद्धा श्रद्धा तेरे जिम्मे, मुझे इस विषय का पाप न लगे। बोले नहीं महाराज। नारद जी ने कहा सुनो, भगवान तुझे मिलेंगे लेकिन पीपल में जो पत्ते हैं जितने, कुटिया के पास जो पीपल खड़ा है, पीपल में जो पत्ते हैं, पीपल के पेड़ में जो पत्ते हैं, उतने जन्मों के बाद भगवान तेरे को मिलेंगे, ऐसा समाचार लाया हूं। नारद जी तो नारायण नारायण करके भागे। वो लड़का उठा के, करोड़ों जन्म मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए, अब इतने थोड़े से ही तो पत्ते हैं और फिर मुझे भगवान मिलेंगे, मेरे इष्ट मुझे मिलेंगे, प्रभु वाह तेरी जय हो, मेरे प्रभु तेरी जय हो, तू मुझे मिलेगा, वो दिन आएंगे मैं तुझे मिलूंगा। बस प्यार से वो नाचने लगा, झूमने लगा, तन्मय होने लगा। ऐसा तो तदाकार हो गया कि देह अध्यास उसका अनजाने में गलित हो गया। गलते देह अध्यासम विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समादया। देह अध्यास उसका मनो गलित हो गया, इतने में वो क्या देखता है, भगवान चक्रपाणि गरुड़ पर पधारे। भगवान कहते भगत भगत आंख खोल मैं आ गया हूं। वो भाव विभोर कीर्तन करते करते तदाकार हुआ। भक्त बोलता है भगवान आप अभी कैसे, एक पहर ही नहीं हुआ अभी तो। नारद जी कह गए थे कि पीपल में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद आप मिलने वाले हैं, भगवान आप एड्रेस तो नहीं भूल गए। भगवान कहते नारद नहीं नहीं, जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता है, वहां कर्म बंधन नहीं होता। मारो वालो भूख्यो छे प्रेम नो रे, वाले खादी विदुरनी बाजी रे लोल, वाले छोड़या छप्पन भोग, मारो वालो भूख्यो छे प्रेम नो। आप अपने कर्म में अपने व्यवहार में प्रेम मिला दीजिए, स्नेह मिला दीजिए, बंदगी बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। रसोई बनाइए, फुलका चपाटी बनाइए, लेकिन बेटे बेटी पति पत्नी के लिए मत बनाइए। पति पत्नी और बेटे बेटी के गहराई में जो मेरा ठाकुर जी है उस लिए बना रही हूं, आपकी रोटी बनाना बंदगी हो जाएगा ना। अपने कर्म में भगवान का नाता जोड़ दीजिए। और वास्तव में तो यह है कि बेटी हो कि बेटा हो, बेटे का बाप हो, भगवान की सत्ता के बिना उसका अस्तित्व नहीं। बेटे के बाप का अस्तित्व नहीं भगवान की सत्ता के सिवाय। हर दिल की धड़कन उस परमात्मा की सत्ता से तो चलती है, तो काहे को फिर मोह से हम काम करें, हम प्रीति से क्यों ना करें। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तांते उपजे पुनि भवशूला। उल्टे ज्ञान को मोह कहते हैं, वास्तविक में जो है उसको न जानना और अवास्तविक को वास्तविक समझना, इसको मोह बोलते हैं। वास्तविक जहां से मैं उठता है वह हमारा अपना आपा है, वह भगवत तत्व है, वही सत्य है, वही अमिट है। वास्तविक हम अमिट है लेकिन मिटने वाले देह को मैं मानते हैं। वास्तविक मेरा पुत्र या मेरा पिता या मेरी पत्नी या मेरा पति, वास्तविक तत्व में वो अमिट है लेकिन उसके मिटने वाले देह को मैं मानते कि मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भैया है, ये मेरी बहन है। ये उल्टा ज्ञान मोह है। उल्टे ज्ञान को हटाने के लिए भगवान में प्रीति करिए और भगवान के नाते लोगों से व्यवहार करिए। किसी का धन देखकर, किसी की सत्ता देखकर, किसी का सौंदर्य देखकर, किसी की चतुराई देखकर व्यवहार न करिए। चतुराई सत्ता सौंदर्य के गहराई में अपने पिया को देखकर व्यवहार करेंगे तो प्रीति हो जाएगी, भक्ति योग मिलेगा, बुद्धि योग मिल जाएगा। तुम्हारे कर्म अगर अच्छे हैं तो तुम्हारे चित्त में वैराग्य उत्पन्न होगा। जाने जीव तब जागा, हरि पद रुचि विषय विलास विरागा। हम कब जगे? कर्म करने के पहले उत्साह होता है, कर्म करते समय पौरुष होता है, और कर्म के अंत में हमारे चित्त में कर्म का फल प्रकट होता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, कर्म के अंत में हमारे चित्त में क्या फलित हुआ? हमारे चित्त में विषाद फलित हुआ, अहंकार फलित हुआ, दुख फलित हुआ, शोक फलित हुआ, की वासना फलित हुई, अथवा आत्मशांति फलित हुई। अगर कर्म करने के बाद तुम्हारे चित्त में शांति फलित हुई है, कर्म करने के बाद तुम्हारे चित्त में आनंद फलित हुआ है, तो वो कर्म तुम्हारा सत्कर्म है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अभी हम लोग गंगा किनारे बैठे हैं और वेद व्यास जी की तपस्थली पर हरि कथा सुन रहे हैं। ये हमारी अटकल से हम लोग इकट्ठे नहीं हुए, हमारा कोई न कोई ऐसा सत्कर्म है जिस सत्कर्म से अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट हुए हैं, हमारा कर्म अच्छे ढंग से संपन्न हुआ है और उस सत्कर्म के फल स्वरूप सत्य स्वरूप ईश्वर ने हमें पसंद किया है, हमारे अंतःकरण में प्रकट होने का ईश्वर ने संकल्प किया है, इसलिए हम कथा में प्रीति पूर्वक आते हैं और सुनते हैं, नहीं तो कलयुग में कथा। भागवत में एक प्रसंग आता है कि कलयुग बैल का चौथा पैर भी तोड़ रहा था और परीक्षित ने उठाया बाण के पापी मैं तुझे मार दूंगा। कलयुग कहता है महाराजन सुनो सुनो, मेरे में दोष तो बहुत है लेकिन गुण एक बड़ा भारी है। सतयुग में 12 वर्ष तपस्या करे, द्वापर और त्रेता में 12 वर्ष अर्चना पूजा करे, उससे जो पुण्य होता है उतने का उतना पुण्य कलयुग में केवल एक माला घुमाने से हो जाएगा। ये महाराज मेरा सद्गुण भी तो देखिए। महाराज ने दया कर दी, तीर कमान रख दिया। कलयुग दूर जाकर ठाका मार के हंसता है, बोले क्यों हंसता है? बोले एक माला करने दूं तब ने एक माला नहीं करने दे। संत कबीर चबूतरे पे बैठे थे, कुछ उदास मजदूर पसार हुए। संत हृदय नवनीत पुनीता, किसी की उदासी देखकर कबीर कैसे चुप रह सकते? भाई क्यों उदास हो, क्या बात है? बोले महाराज आज मजदूरी नहीं मिली, दाढ़ी नहीं मिली, क्या खाएंगे? बोले चिंता ना करो, अभी तो 12 ही बज रहे हैं, भोजन हो रहा है, थोड़ी देर में भोजन सिद्ध हो जाएगा, भोजन पा लेना, फिर माला दूंगा, राम राम करना, सूरज अस्त होते ही दिन भर का जो भी तुमको मिलता वो पैसा दे देंगे। मजदूरों की तो आंखें फट गई है, रे भोजन भी मिलेगा और उतना ही पैसा? बोले हाँ। वाह, भोजन हो गया, माला पकड़ा दी गई, थोड़ी देर एक दो माला जपी, बगासे खाने लगे कि दिन क्यों नहीं उतरता, दाढ़ो क्यों नहीं हाथ में। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तो समझा कि ये एक दिन है कि एक महीना हो गया। शाम हुई न हुई, कबीर जी को माला दे दी, उन्होंने दाढ़ी ले ली, पैसे ले लिए। कबीर बोलते कल मजदूरी करने मत जाना, पत्थर कूटने मत जाना, इधर ही आ जाना, 10 बजे 8 बजे ना आ सको तो 10 11 12 बजे भी आ जाओगे तो चलेगा, भोजन यहाँ पा लेना और खाली राम राम जपना। बोले महाराज ये आशीर्वाद ना करो, मैं भाठा फोड़ूंगा और लकड़ी काटूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन ये माला घुमाना महाराज कठिन लगता है। ऐसा भगवान का नाम कलयुग में जो कठिन लगता है, सत्संग में सहज में आता है, ये सत्संग की महिमा, नहीं तो और क्या। यहाँ किसी को दाढ़ी नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा, फिर भी हरिनाम कीर्तन में आनंद से झूमेंगे, ये सत्संग की महिमा है। उत्तम प्रकार का जापक, मध्यम प्रकार का जापक, कनिष्ठ प्रकार का जापक, तीसरे नंबर का जापक वह है कि उसको पैसा दिया, प्रलोभन दिया अथवा कोई नियम दिया और माला घुमाई, मन इधर उधर भागता और माला घुमाई, जप कर लिया, ये थर्ड क्लास जापक। दूसरे नंबर का जापक जो नियम है, प्रेम से माला किया और अर्थ मंत्र का अर्थ जपते विचारते और जप करता जा रहा है, कभी कभार उसके सुषुप्त मूलाधार केंद्र में जो जीवन शक्ति है उसमें कुछ स्पंदन होता है, कभी झटका आता है, कभी आगे पीछे शरीर हिलने लगता है, उससे थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है, समझो ये मध्यम प्रकार का जापक है। उत्तम प्रकार का जापक वह है कि उसके सानिध्य में बैठे दूसरा कोई तो उसको भी जप करने की इच्छा हो जाए, वो उत्तम प्रकार का जापक। नर्मदा किनारे 12 साल के दो अनुष्ठान किया हुआ एक मेरा मित्र संत, उसने मेरे से पूछा, 24 साल के दो अनुष्ठान उसके संपन्न हुए, उसके पहले भी उसने बहुत सारे अनुष्ठान छोटे मोटे किए थे, उसने मेरे से पूछा कि सच्चे संत की पहचान क्या? भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, गीताया श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तनात साधु दर्शन मात्रेन तीर्थ कोटि फलम लभेत, तो सच्चे साधु की पहचान बताइए ताकि करोड़ों तीर्थों का फल हो जाए। सच्चे साधु की पहचान क्या? मैंने कहा महाराज सच्चे शराबी की पहचान क्या? बोले खूब शराब पीता हो? मैं क्या नहीं नहीं। सच्चे जुआरी की पहचान क्या? बोले दिन भर जुआ करता हो? मैं क्या नहीं। सच्चे भंगेड़ी की पहचान क्या? बोले खूब भांग पीता हो? मैं क्या नहीं। सच्चे भंगेड़ी की पहचान है कि दूसरे को भंगेड़ी बना दे, सच्चे शराबी की पहचान है दूसरे को शराबी बना दे, ऐसे सच्चे संत की पहचान है कि दूसरे को भी संतत्व का रंग लगा दे। नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सच्चे संतों की निगाहों में आ जाते हैं। विवेकानंद बोलते कि 33 करोड़ देवता हैं उनको मानते फिरो, हमारा इनकार नहीं, सूर्य भी देवता है भगवान उन्हें मानो, जल भी देवता है, माता भी देव है, पिता भी देव है, लेकिन हम तो मनुष्य शरीर में हैं, हमें जब तक मनुष्य आकृति वाला ब्रह्मवेता देव नहीं मिलता तब तक आत्मदेव नहीं जगता, इसलिए ब्रह्मवेताओं को आत्मरापी संतों को खोजो। ब्रह्मवेता ब्रह्मवित भवती वाणी ताकि वेद, भाषा अथवा संस्कृत करत भरम भव छेद।